मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। ये मेरा अपना फैसला है जो अब नहीं बदलेगा। आप अंशु का ध्यान रखिएगा और किसी ऐसी लड़की को उस घर में लाइएगा जो अंशु को माँ का प्यार दे सके। उम्मीद करती हूँ कि मेरे फैसले में आप मेरा साथ जरूर देंगी और मुझे वापस उस घर में जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगी। अर्पिता जी शॉक्ड सी उसको देखती ही रह गईं। उन्हें आरवी के इस तरह के फैसले की जरा भी उम्मीद नहीं थी। उन्हें तो लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर यहाँ आरवी ने उन्हें शॉक दे दिया था जिससे वो अब तक बाहर नहीं आ सकी थी। वो तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी तो जवाब क्या देती। वहीं शान जो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था, उसने ठंडी आह भरी और गंभीरता से बोला, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो कोई तुम्हें वापस वहां आने के लिए और इस रिश्ते को निभाने के लिए फोर्स नहीं करेगा। जिसमें तुम्हारी खुशी है वही होगा। पर एक बात समझ लो कि भले तुम दूर रहोगी मुझसे, पर ना ही मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा, ना तुम्हें मुंबई से बाहर जाने दूंगा और ना ही तुम्हारे अलावा कोई दूसरी लड़की उस घर में बहू बनकर आएगी। इन कंगनों पर सिर्फ तुम्हारा हक है और चाहे कितना ही लंबा इंतजार क्यों ना करना पड़े, पर जाएंगी ये तुम्हारी ही कलाइयों में और इंतजार करूंगा मैं तुम्हारा। मेरे गुनाहों की सजा दे रही हो ना मुझे खुद से दूर करके, तो मंजूर है मुझे तुम्हारी ये सजा। आसान नहीं तुम्हारे बिना रहना, पर रह लूंगा इस उम्मीद पर कि कभी तो ये सजा खत्म होगी। कभी तो वो दिन आएगा जब तुम मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ करोगी और वापस उस घर में आओगी जहां पहली बार मेरी पत्नी बनकर तुमने कदम रखा था। मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती तो जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी मैं दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। आरवी भावहीन सी उसको देखती रही, वहीं अर्पिता जी हैरान परेशान सी उसको देखने लगी। शान ने गहरी सांस छोड़ी और गंभीरता से आगे बोला, तुम्हें मल्होत्रा हाउस नहीं आना तो कोई बात नहीं, कोई तुम्हें वहां आने के लिए फोर्स नहीं करेगा। अब तुम अपने डैड के घर जाओगी या अपनी माँ के पास जाओगी, ये फैसला तुम्हारा खुद का होगा। पर जहां भी रहोगी मेरी नजरों के सामने रहोगी, और अगर तुमने इन दो जगहों से अलग कहीं जाने की कोशिश की या मुंबई से बाहर जाने का सोचा भी, तो तुम सीधे मल्होत्रा निवास में नजर आओगी और चाहकर भी फिर मुझसे दूर नहीं जा सकोगी, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। शान ने उसे लगभग धमकी दे दी, फिर अर्पिता जी को देखकर बोला, बड़ी माँ चलिए घर, सब इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर वो वार्ड से बाहर निकल गया। अर्पिता जी ने अब आरवी को देखा तो उसने उनके हाथ को छोड़ते हुए कहा, जाइए बड़ी माँ और सबको मेरे तरफ से सॉरी कह दीजिएगा, मैं अब वहां नहीं रह सकूंगी। अर्पिता जी कुछ पल खामोशी से उसको देखती रहीं, फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा अगर यही आपका आखिरी फैसला है और इसी में आपकी खुशी है तो हम आप पर कोई दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ जाएगी। और अगर आपका मन ही नहीं तो वहां रहकर भी आप वहां नहीं होंगी। इससे बेहतर है कि आप वहीं रहें जहां आपकी खुशी है। अपना ध्यान रखिएगा, कभी कभी मिलने दीजिएगा हमें खुद से। अभी हम आपको वहां आने को नहीं कहेंगे और आपकी अमानत को भी अभी अपने पास संभाल कर रखेंगे। हम इंतजार करेंगे आपका, और जब आप वापस उस घर में उस घर की बहू और शान की पत्नी बनकर कदम रखेंगी तब हम पूरे हक से आपको ये कंगन पहनाएंगे। अब चलते हैं हम, ध्यान रखिएगा अपना और कभी कभी फोन करके अंशु और हम सबसे बात कर लीजिएगा। आरवी ने हाँ में सर हिला दिया और आगे बोली, बड़ी माँ मुझे आपको कुछ बताना है। बोलिए बेटा। आप सब उन्हें गलत मत समझिएगा, हमारे बीच जो हुआ था वो मेरी मर्जी से हुआ था, उन्होंने जबरदस्ती नहीं की थी मेरे साथ। आरवी ने अपनी निगाहें झुका ली। शान को लेकर जो गलतफहमी सबको हो गई उसे उसने दूर कर दिया था। अर्पिका जी कुछ पल खामोशी से उसे देखती रहीं, फिर उसके माथे को चूमते हुए बोली, आपसे बेहतर जीवन साथी शान को नहीं मिल सकती। ये उनकी बदकिस्मती है कि उन्होंने आपकी कदर नहीं की और आपको खो दिया। अब बस आप खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, अभी आपको आराम की बहुत जरूरत है। आरवी ने सर हिला दिया। अर्पिता जी बाहर आईं तो शान एक तरफ खड़ा अर्जुन से कुछ बात कर रहा था। उन्हें देखकर शान ने अर्जुन को कुछ कहा फिर बाहर निकल गया। अर्पिता जी भी उसके पीछे चली आईं। आरवी सर झुकाए वार्ड में बैठी थी तभी उसके वार्ड का दरवाजा खुल गया। आरवी ने तुरंत सर घुमाकर देखा और सामने खड़े अर्जुन को देखकर हौले से मुस्कुरा दी। अर्जुन उसके पास चला आया और स्टूल लेकर उसके पास ही बैठ गया। कुछ पल उनके बीच गहरी खामोशी छाई रही, फिर अर्जुन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आरवी वैसे जिंदगी तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा। तुम इतनी समझदार हो कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद से ले सको, और अगर तुमने कुछ डिसाइड किया है तो कुछ सोचा ही होगा, इसलिए मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। पर फिर भी जो तुमने फैसला लिया है उसके लिए एक बार अच्छे से सोच लो, आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। मैंने अच्छे से सोचने के बाद ही ये फैसला लिया है। अगर आज मैंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और उनसे दूर नहीं गई तो आज जो नाराजगी है वो नफरत में बदल जाएगी, परिस्थितियां और बिगड़ जाएगी, मैं खुद को ही खो दूंगी। मैं वक्त चाहती हूं अब अपने लिए। उस घर में उस रिश्ते में अब दम घुटता है मेरा, मैं जानती हूं कि मैंने क्या क्या नहीं सहा है इस रिश्ते को निभाने के लिए, पर अब मुझसे नहीं होगा। अब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दरकिनार कर मैं उस घर में नहीं रह सकती। मैंने ये फैसला बहुत सोचने समझने के बाद लिया है। चल ठीक है, अगर यही तेरा फैसला है मैं इसमें तेरा साथ जरूर दूंगा। तू शान के साथ नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, तू मेरे और डैड के साथ अपने घर चलेगी, वहां तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अर्जुन की बात सुनकर आरवी ने तुरंत ही इनकार करते हुए कहा, भैया मैं वहां नहीं जाऊंगी, ना मैं मल्होत्रा हाउस जाना चाहती हूँ और ना ही ठाकुर निवास जाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ वो भी मेरा घर है और मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। मेरे मन में अब ठाकुर साहब को लेकर भी कोई नाराजगी भी नहीं है, पर मैं वहां नहीं जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा वहां, मैं चाहकर भी वहां खुश नहीं रह सकूंगी। आप मुझे मेरे घर छोड़िए, मुझे माँ के पास जाना है। आरवी ने रुंधे गले से अपनी बात कही और आंखों में भरे आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। अर्जुन उसके मन के दुख को समझ रहा था, इसलिए उसने भी आगे कुछ नहीं कहा। डिस्चार्ज के पेपर रेडी हो चुके थे तो अर्जुन आरवी को लेकर वहां से निकल गया। अर्जुन उसे लेकर अनुपमा जी के घर पहुंच गया। आरवी अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। अर्जुन उसको सहारा लेकर गेट तक लेकर आया। उसने डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद अनुपमा जी ने दरवाजा खोला। सामने आरवी को देखकर वो एकदम से चौंक गई। बेटा आप यहाँ कैसे आई? आज तो आपको डिस्चार्ज मिला था, तो आपको अपने घर जाना चाहिए था, फिर आप यहाँ कैसे? और आप अकेली आई हैं? दामाद जी नहीं आए आपके साथ? अर्पिता जी ने आसपास निगाहें घुमाते हुए कहा। आरवी से कुछ बोलते नहीं बना, उसका गला भर आया और वो उनके गले से लगकर फभक कर रो पड़ी। अनुपमा जी उसको यूं रोते देखकर परेशान हो गई और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है बेटा? उनको यूं घबराते और परेशान होते देखकर आरवी ने किसी तरह खुद को संभाला और उनसे दूर हो गई। आपकी बहुत याद आ रही थी माँ, इसलिए यहाँ आ गई और अब यहीं रहूंगी आपके साथ। क्यों बेटा, यहीं रहेंगी से आपका क्या मतलब है? आपके और दामाद जी के बीच सब ठीक तो है बेटा? आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? अनुपमा जी अब और ज्यादा पैनिक करने लगी। अब अर्जुन ने बात संभालते हुए मुस्कुरा कर कहा,
आंटी आप बेफिक्र रहिए, शान और आरवी के बीच सब कुछ ठीक है। आरवी को कुछ वक्त आपके पास रहना था तो शान ने खुद उसको यहाँ रहने की परमिशन दी है। जब तक आरवी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती वो यहीं रहेगी आपके साथ, क्योंकि एक माँ से बेहतर ध्यान बच्चे का और कोई नहीं रख सकता। अब आप परेशान होना छोड़िए और आरवी को अंदर ले जाइए, उसे अभी आराम की सख्त ज़रूरत है। अनुपमा जी ने सर हिला दिया। उन्होंने अर्जुन को भी आने को कहा पर उसने इनकार कर दिया। मुझे डैड को हॉस्पिटल से घर लेकर जाना है, इसलिए अभी रुकने का टाइम नहीं है, कभी और आऊंगा और तब आपके हाथों का बना खाना भी खाऊंगा। सुना है बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आप। बिल्कुल बेटा, अपना ही घर समझिए और जब दिल करी तब आ जाइएगा, हम आपको भी खाना बनाकर खिला देंगे। अनुपमा जी की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराकर हामी भरी, फिर आरवी का सामान अंदर रखा और इजाज़त लेकर वहां से चला गया। अनुपमा जी आरवी को अंदर ले आई, उसको सोफे पर बिठा दिया और खुद उसके पास बैठते हुए बोली, आरवी सच में कोई गंभीर बात नहीं है ना? आपके और दामाद जी के बीच सब ठीक है ना? आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? अब भी उनके मन में शंका थी। आरवी ने गहरी सांस छोड़ी और मुस्कुराकर बोली, नहीं माँ कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बस मेरा मन किया कुछ दिन अपनी माँ के साथ बिताने का, तो आ गई यहाँ आपके पास। अगर आपको मैं बोझ लग रही हूँ तो बोल दीजिए, मैं वापस चली जाऊंगी। आरवी ने झूठी नाराजगी जताते हुए मुंह फुलाया और जैसे ही उठने लगी अनुपमा जी ने उसको वापस बिठाते हुए कहा,